जिनकी नगरी सब प्रकार से संपन्न थी, जहां के नागरिक सब प्रकार से सुखी थे, जो चहुमुर से सुरक्षित थी, महाराज दशरथ के करीब 8 मंत्री थे और उनके 8 पुरोहित थे। इस प्रकार से महाराज दशरथ का राज्य बड़े शांतिमय चल रहा था। सब लोग मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, दूसरे सब लोग सुखी थे, लेकिन महाराज दशरथ बड़े दुखी थे। और उनके दुख का कारण था कि उन्हें कोई संतति नहीं, कोई संतान नहीं थी। इसलिए महाराज दशरथ विचार करने लगे कि ऐसा क्यों न किया जाए कि हम एक अश्वमेध यज्ञ करें पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसा कि मैं कल बताया था कि कोई भगवान के आश्रय में कैसे भी जाता है तो उसका कल्याण होता है। किसी भी प्रकार से कोई भगवान के शरण में जाए तो उसका कल्याण होता है। महाराज दशरथ भगवान के शरण में गए। जिस प्रकार से हम लोगों पर कोई विपत्ति आती है, हम लोगों को कोई कठिनाई आती है तो तुरंत शंकराचार्य बिहारी को याद करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उस समय के लिए, उस युग के लिए उपयुक्त जो धर्म था वह था यज्ञ। इसलिए महाराज दशरथ यज्ञ करने का निर्णय किए। देखिए, भगवत भक्ति संबंधी हम कोई भी कार्य करें, वह कार्य शास्त्र और गुरु के अनुमोदन के अनुसार होना चाहिए। ऐसे कोई भी कार्य, कोई भी कार्य हो, वो शास्त्र और गुरु के अनुमोदन के अनुसार होना चाहिए। यदि हमारे कार्य को शास्त्र और गुरु अनुमोदित नहीं करते हैं तो वह कार्य किसी प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्कृत्य वर्तते कामकारक न सह सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परांगति। जो व्यक्ति शास्त्र के नियम कानून का उल्लंघन कर करके और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य करता है, यह शास्त्र विधि उत्कृत्य त्याग करके छोड़ करके वर्तते काम कारक, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यरत रहता है, तो भगवान कहते हैं न सह सिद्धि वाप्नोति, वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। यानी जो भी कार्य करना वो प्रारंभ किया उस कार्य में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे भजन हो, कुछ भी हो, उसमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। न तो सिद्धि माफ होती न सुखम, जब से काम करना शुरू करे तब से ही दुख के ऊपर दुख आना शुरू करेगा, अंत सुख नहीं आएगा। जहां की भगवत पारायण होकर के साधु वैष्णव गुरु पारायण होकर के कार्य करेंगे तो उसमें पग पग पर आनंद की अनुभूति होगी, न सुखम न पराम गति और न तो अंत में परम गति की प्राप्ति होगी, रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान गीता में सलाह देते हैं, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। इसलिए क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका आधार क्या होना चाहिए? तो बस इस काम दशरथ जी सोचे कि मुझे जग की जरूरत है। जग करना अच्छा चीज था, समय जग करना, और समय क्या था? जो धर्म था, सब कुछ समुचित होने के बावजूद भी वे अपने मन से नहीं करना चाहते थे। वे तुरंत अपने गुरु और पुरोहितों को बुला लेंगे। जब सब गुरु वर्ग आए, वशिष्ठ जी आए, वामदेव आए, सुजग आए, जवाली आए, कश्यप आए, इस प्रकार से सब लोग आए तो उनके सामने हाथ जोड़ करके और वशिष्ठ जी अपने दिल का बात कहने लगे। देखिए, गुरु और कृष्ण से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, भगवान से और वैष्णव से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। कह जाते दिल का बात, दो तीन चीज फायदा होता है। कह देने से एक तो दिल हल्का हो जाता है थोड़ा, दूसरा अपक से अपना भाव था तो अदय से उनका भाव हो जाएगा, और तीसरा कि कहने से उसका समाधान प्राप्त हो सकता है। तो अपक से दशरथ जी का भाव था कि उन्हें कोई संतान नहीं है, उन्हें बहुत दुख था, और अपने गुरु वर्ग से कहे, सब बात करने के बाद अपना निर्णय करे कि मैंने सोचा है गुरुदेव कि एक अश्वमेध जग करनी चाहिए। कितना बज रहा है, बच्चे को खिला खिला कर लाइए, भूखा ना हो के सोएंगे। सब लोग मोबाइल को साइलेंट पर रख दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ जी, क्या बात हो रही थी? हाँ, अपना निर्णय सुना है, ठीक है, अपना निर्णय है। उन्होंने निर्णय किया था, लेकिन फाइनल निर्णय था उन गुरुओं के अनुमति पर। जब यह बात वे लोग सुने, तो महर्षि लोग तो बड़े गदगद हो गए, बड़े खुश हो गए, और खुश हो कहते हैं, ततः साधु इति तद वाक्यम। हे महाराज दशरथ, आप जो बात कह रहे हैं ये आपके अनुचित है, आपके अनुसार ही है, आपसे यही अपेक्षा की जाती है। तब साधु इति तद वाक्य, आपने जो कहा है, जो वाक्य, जो बात, जो निर्णय आपने किया है, कैसा है? कहते साधु है, साधु मतलब कहते, कहते बड़ा अच्छा है। अरे अभी मैं कहा मोबाइल बंद कर, ये अच्छा बात है। वास्तव में कोई भजन करना चाहे तो साधु का काम है, गुरु का काम है कि उसके भक्ति में प्रश्रय दे, बढ़ावा दे, ना कि उसके भक्ति को हानि पहुंचाए। भक्ति करना अच्छा काम है, आप वशिष्ठ जी कहते हैं ये साधु काम है, अच्छा काम है। संसार में सबसे अच्छा काम है वह है हरि भजन करना, और कोई अच्छा कार्य नहीं है। एकमात्र अच्छा कार्य हरि भजन करना। प्रहलाद जी यही कहते हैं, साधु मन्ने सुदवर्जने नाम सदा समुद्री अपग्रहाय हित्वा तपापं विहंगरूपं वनं गतो यत् हरिमातरेत। अच्छा चीज है कि जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, बस भगवान का भजन करना सबसे अच्छा चीज है। यह है शास्त्र प्रमाण। ठीक उसी बात को प्रहलाद जी कहे सद्युग में, उसी बात को त्रेता युग में यहां पर वशिष्ठ जी कहते हैं, तब साधु इति तद वाक्य। ब्राह्मण पति पूजय, वशिष्ठ आदि जितने ब्राह्मण थे वे लोग राजा से ऐसा कहे, हे महाराज, आपने जो बात कहा है वो बड़ा अच्छा है। सर्वे पार्थिव खेरितम, उनके मुख से सुनते हैं सब लोग, प्रसन्नचित हो गए। तो ऐसा बात कहना चाहिए गुरु कृष्ण के सामने कि गुरु कृष्ण नाराज ना हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बड़े प्रसन्न और प्रसन्न होकर के तुरंत स्वीकृति दे दिए। अब तो महाराज सब कहना ही किया था, वो तैयार थे कि जज होना चाहिए और स्वीकृति हो गया, गुरु का स्टैंड लग गया, ऑथराइज हो गया, तब तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ अब तैयार हो गए और वशिष्ठ जी पूरे जग के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता थी सबका लिस्ट बनवाए, मंत्रियों को बुलाए और मंत्रियों से सलाह कर करके जग के लिए लिस्ट बनवाए और क्या क्या सामग्री चाहिए इत्यादि सब लिखवा लिए। जब सब कुछ तैयारी हो गई थी तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने सुमन जी से कहा जो महाराज दशरथ के प्रधान मंत्री थे कि आप जाइए और महाराज दशरथ से कहिए कि वह पत्नियों सहित दक्ष में यज्ञ के लिए वे दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा का मतलब संकल्प, संकल्प लेना पड़ता है, कोई यज्ञ होता है कोई संकल्प लेना पड़ता है, उसे दीक्षा कहते हैं। इस प्रकार से जो दीक्षा होती होगी संकल्प है, संकल्प लेते हैं चार नियम का पालन करेंगे, सब हमारा जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे इत्यादि इत्यादि संकल्प होता है। तो संकल्प लेने के लिए वे कहें वास्तव दीक्षा मृतक वक्षे हम सुतकार, किसके लिए सुतकार, पुत्र प्राप्ति के लिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, भगवत प्राप्ति के लिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। कोई समय के बिना दीक्षा के भगवान को प्राप्त करूंगा यह संभव नहीं है, दीक्षा बहुत जरूरी है। इस प्रकार से जब वशिष्ठ जी सलाह दिए सुमंत जी को तो सुमंत जी आए और सुमंत जी के मन में एक बात थी जो बहुत पहले वे सुने थे, अभी तक महाराज दशरथ से कहे नहीं थे, लेकिन जब बाल बच्चों का बाप आ ही गया है तो सोचे कि मैं कह के न थी। हालांकि सुमंत जी भेजे गए थे महाराज दशरथ के पास उनको बतलाने के लिए कि आप रानियों के साथ लेकर के आइए, दीक्षा में बैठ दीक्षा ग्रहण कीजिए और जग की जग प्रारंभ होने वाला है, लेकिन सुमंत जी जाकर के वे कुछ बात कहने लगे। एकांत में महाराज को बुला कर कहते हैं एतत् श्रुत्वा रहस्तो राजा इदम् अब्रवीत् श्रुतां तत्पुरावृत्तम् पुराणे च मया श्रुतम्। कहते बहुत पुरानी बात है, मैंने सुना है, एक समय की बात है, मैंने सुना कि समकालीन ब्रह्मा जी के जो चार मानव पुत्र हैं दस कुमार इत्यादि वे लोग पूर्व काल में इस प्रकार से वार्ता कर रहे थे कि त्रेता युग में एक राजा होंगे जिनका बड़े प्रतापी राजा होंगे, उनका नाम दशरथ होगा और उनके उन्हें चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ जब यह बात सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, कहे सुमन दास ने सबसे बताया क्यों नहीं था। सुमन जी कहे कि महाराज अभी तक मैंने उचित नहीं समझा था और समय भी नहीं आया, सब्जी का समय होना चाहिए, समय नहीं आया था। तुम्हारा दशरथ को बड़ी जिज्ञासा था, तुम्हारा दशरथ पुनः पूछे फिर आगे आपने क्या सुना था और क्या सुना था। तो बाकी महाराज मैंने ये भी सुना था कि कश्यप मुनि के पुत्र विभांडव नाम के एक ऋषि हैं, उन ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है ऋषि श्रृंग। एक आचार्य कहते हैं श्रृंग का मतलब सिंह, बैल का सिंह होता है ना, तो एक ऋषि थे जिनको सिंह था, यानी ऋषि का आचार्य करता ऋषि सिंह का, लेकिन रामायण में ऋषि सिंह ही कहा गया है। तो ऋषि श्रृंग हैं, वे आपके मित्र रोमपाद जी के यहां पर एक बार सूखा पड़ेगा और महाराज रोमपाद ऋषि सिंह को अपने यहां बुलाए,
तो दशरथ जी की बड़ी उत्सुकता होने लगी। दशरथ जी पूछने लगे फिर क्या होगा, फिर कैसे क्या होगा। तो मानो सुमन जी कहते हैं कि महाराज हो चुका है, मैं पहले सुना था लेकिन हुआ है, क्या हुआ है। तो एक समय महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। तो महाराज रोमपाद अपने समस्त वासियों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को, ऋषिकों को, सब लोगों को बुलाए और बुला करके उन लोगों के बीच में एक प्रस्ताव रखे कि हमें क्या करने चाहिए जिससे जो अकाल पड़ा हुआ है इससे छुटकारा मिले। उन ऋषियों ने मिल करके सोचा विचारा तो उनके गुरु जो थे उन्होंने कहा, हे महाराज आज के दिन एक ही चीज संभव है और वह यह है कि विभांगक ऋषि का पुत्र सिंही ऋषि यदि किसी प्रकार से आपके राज्य में आ जाए और आपने अपने औसत पुत्री जो है शांता उसको उसको विवाह के रूप में दे दें तो आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। यह शांता है वो दशरथ जी की पुत्री थी और महाराज रोमपाल को कोई संतान नहीं था तो इसलिए महाराज दशरथ शांता को दे दिए थे रोमपाल को। तो औरत पुत्री थी महाराज रोमपाल की शांता। तो महाराज रोमपाल ने सोचा तो बड़ा अच्छा विचार है, तब ऋषि को लाना चाहिए। तो इसमें देर किया, आप लोग तैयारी कीजिए जाने के लिए, जाकर के लेकर के आइए ऋषि को। तो लोग तुरंत बोले कि नहीं महाराज हम लोग नहीं जा सकते। महाराज रोमपाल पूछे क्यों आप लोग नहीं जा सकते हैं, कारण क्या है। कहा कि नहीं महाराज जो विभांडक मुनि हैं वे बड़े तपस्वी मुनि हैं और वे अपने पुत्र को अपने से कभी आज तक अलग नहीं रखे हैं। उनका पुत्र उनके अलावा और किसी को जानता ही नहीं है, अपने मां को भी नहीं जानता। यदि ऋषि को ऐसा बात पता चल जाएगा तो ऋषि जरूर हम लोगों को श्राप दे देंगे, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। तो राजा पूछे तो आप लोग बताइए उपाय क्या है, किस प्रकार आप लोग जाना नहीं चाहते हैं तो उपाय क्या है, किस उपाय से श्रृंगी ऋषि यहां पर आ सकते हैं। तो इन ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि आप ऐसा करें कि अपने नगर के सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजी और वे अप्सराएं उनको लेकर के आएगी। तुम्हारा स्थान पास तत्क्षण जो भी उनके राज्य में सुंदर सुंदर अप्सराएं थी, ये अंग राज के थे, अयोध्या से नजदीक ही है अंगदेश, यहां कर्ण राजा थे इलाहाबाद और अयोध्या के बीच। तो अंगदेश के राजा थे महाराज रोमपाल, वे अपने अंगराज में जितने भी सुंदर सुंदर अप्सराएं थी प्रत्याएं थी उन लोगों को बुलाए और उन लोगों को यह कार्य दिए कि तुम लोगों को यह काम करना है और जो ये काम कर लेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ये इनाम दिया जाएगा और बल्कि दे भी दिए, पहले भी दे दिए। जब कुछ कठिन काम कराना होता है तो पहले इनाम दे देना चाहिए, बाद में देंगे इन पहले भी दे देना चाहिए। हमें याद है कि एक बार हमारे कैप्टन सलारिया है ना, तो कुछ समुद्री जहाज को कुछ समुद्री डकैत लोग हैजेक कर लिए थे और वो जहाज आ गया था गेटवर्क की दिया तरफ पेपर में था। तो कैप्टन सलारिया बता रहे थे हमसे गवर्नमेंट हाथ उठा लिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पुलिस वाले हाथ उठा लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिप सिक्योरिटी को बुलाया गया तो कैप्टन सलारिया अपने चक जवानों को बुलाए और कहे भाई देखो ये काम करना है, तुम लोगों के अकाउंट में 50 लाख रुपया भी डालता, एक एक व्यक्ति के अकाउंट में 50 लाख रुपया डालता, और तुम लोगों को एक काम करना है। वो पुर्तगाल का जहाज था, तो करीब 8 लोग रेडी हो गए जाने के लिए, यानी 4 लाख रुपया, 4 करोड़ रुपया। वो 4 करोड़ रुपया कैप्टन फ्लारिया उनके अकाउंट में डाल दिए, और वो प्लानिंग किए और प्लानिंग करके गए और जाकर उस जहाज को रेस्क्यू कर लिए। तो कैप्टन को बहुत पैसा मिला उसके बाद में, नाम भी आया पेपर में, आया सब कुछ आया था। एनीवे, तो मैं कहता हूं कि वो काम करना हो इस प्रकार से नीति है, तो राजा भी उन बेचियाओं के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाल दिए, हीरा मोतियाला दे दिए, और कहे काम करके जाओ तो और समझा। तो इस प्रकार से सब खुश होकर के बेचियाएं गई, और ऋषि का जहां आश्रम था वहां से थोड़ी ही दूर पर अपना कैंप लगा दी। एक दिन विभांडक मुनि कहीं बाहर गए थे किसी काम पर, प्राय अपने पुत्र को हमेशा साथ ले जाते थे, लेकिन कुछ दिन नहीं लगे। लड़का बड़ा हो गया था, सब प्रकार के ज्ञानों में उन निपुण बालक था, सब ज्ञान उनके पास था, सब कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेता, वेदों के मंत्र का उच्चारण करना, अग्नि का आवाहन करना, मंत्रों का सब कुछ, उसके लिए कुछ भी दिन को रात बना रात को दिन सब कुछ जानता था बालक। तो इस प्रकार से वह टहलते हुए थोड़ा बाहर आया, जब बाहर टहलते टहलते आया तो उसे कैंप दिखाई पड़ा। जब कैंप दिखाई पड़ा तो उसे बड़ा अजन्मी जैसा लगा, पहले कभी कैंप देखा नहीं था, और बड़ा सुंदर कैंप देखने में लग रहा था। तो और नजदीक गया तो उन अप्सराओं को देखा, बच्चियाओं को देखा, देखने में बड़ी सुंदर बच्चियाएं थी, बड़ी सुंदर थी। तो यह समझा कि ये लोग भी पुरुष है, मानते कि स्त्रियां होती हैं, पुरुष हैं, बड़े अच्छे पुरुष हैं, मोछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखने में बड़े अच्छे पुरुष हैं। तो ऋषि कुमार बड़ा आकर्षित हो गया और उन लोगों से जाकर मिला। यहां पर व्रण किया गया, अपृष्ट रूपा तासेन काम्य रूपा वनिस्त्रीह हातापस्य मतिर्जात अख्यातुं पितरं सुखं। वो कभी ऐसा स्त्री नहीं देखा था, और जैसे ही देख रहा था उसके दिल में कुछ हो रहा था, देख करके बड़ा सुंदर है। कोई भी सुंदर परिदृश्य कोई देखे तो मन पर तुरंत असर पड़ता है। नदी के किनारे बैठ करके शाम का समय हो, भगवान सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे हो, आप चले जाइए ऋषिकेश, लक्ष्मी झूला लक्ष्मण झूला तरफ ऊपर चले जाइए, और उत्तर तरफ ऊपर पहाड़ तरफ, और गंगा जी के किनारे बैठ जाइए और माला धोने ले लीजिए, देखिए कितना सुंदर नाम जप होता है, बड़ा मन करता है जप करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंस प्लेस बहुत खास करता है, तो सुंदरता एक काम करता है। तो स्त्रियों को देखे तो उनको बात होने लगा, तो बोले कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा हम लोग यहीं रहते हैं, हमारा आश्रम यहीं पर है। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा पिता विमान को अस्मात सत्याम सुत औरतम विषय सिंह ख्यातम नाम मदनी भूमि। कहते मेरे पिताजी का नाम है विभांडक, मैं उनका औरत पुत्र हूं, और मेरा नाम है ऋषि सिंह, ऋषि सिंह ख्यातम। कितना सुंदर संस्कृत भाषा है, ये ऐसी भाषा है और कोई भाषा इतना अच्छा नहीं, कितना सुंदर बात करते हैं। वे नहीं कहते कि मेरा नाम ऋषि सिंह है, ये कहते हैं कि मेरा नाम ऋषि सिंह है, मतलब जब मैं जन्म लिया उसी समय मेरा नाम ही था, मैं इसी नाम से जन्म लिया। ये नाम बाद में दिया जाता है, ठीक है, जन्म लेने के बाद में इस देह को पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं ऋषि श्रृंग इति ख्यात, ऐसा कहा जाता, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा कहा जाता है, यानी लोगों ने मेरा नाम दे दिया है, मेरा नाम क्या है ऋषि श्रृंग। इस प्रकार से बात होते होते ऋषि बड़े ऋषि श्रृंग बड़े मोहित हो गए उन स्त्रियों के प्रति, वो तो बच्चाएं थी ही,
बड़ा सुंदर ढंग से काम कर रहे थी, नाच कर रहे थी, उनका काम ही था लुभाना, उनको लुभा रहे थी। और ऋषि सिंह बड़े प्रभावित हो गए और उन लोगों को कहे कि आप लोग तो यहाँ पर आई हैं, कैंप डाल रहे हैं, देख रही हैं, आप देख रही हैं, हमारा आश्रम भवन है, आप हमारे अतिथि हैं, आप जरूर हमारे आश्रम पर आए आप लोग। तो इतनी व्यस्तियां थी और ऋषि सिंह के आश्रम पर गई, लेकिन बड़ा डर थी, डरते डरते जा रही थी, डरते डरते जा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं विभांडक मुनि वहां पर होंगे तो हम तो गए काम से, श्राप देने हम चल करके भस्म हो जाएंगे, बड़ा डर रहे थी। लेकिन अपने साथ में कई एक प्रकार के पकवान बना करके लाई थी, मिठाइयां थे, टाइम था तो मिठाई वगैरह था, पकवान था सब। तो ऋषि पहले गए और बाद में ये सब गई सच सच कर करके और पकवान इत्यादि कुछ लेकर के गई। तो ऋषि उन लोगों का स्वागत किए, तो जंगल में तो क्या मिलता है, वहां तो रसगुल्ला नहीं मिलेगा, रसमलाई नहीं मिलेगा, रबड़ी नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा जंगल में, अरे बोलो कम से कम आप लोग, फल फूल कम मूल इत्यादि। तो ऋषि तो वही खाए थे, उन्होंने वो अर्पण किया और एक स्त्रियों ने उसे ग्रहण किया। तो स्त्रियों ने कहा कि देखिए आपने हम लोगों का आतिथ्य किया, ये उचित नहीं है कि हम लोग ऐसे ही हम चले जाए, हम भी चाहते हैं कि आपके आतिथ्य सत्कार करने का तरीका ये है और हम लोगों के आतिथ्य सत्कार का तरीका कुछ और है। अच्छा क्या, तो ये स्त्रियां जो वैश्याएं थी उनको जो स्वीट बना हुआ था, रसमलाई रसगुल्ला लड्डू सब बना करके लेकर गई थी, वो सब उनको खिलाने लगे। जब ऋषि खाने लगे तो सोचे कि मैं पहले ही कहा था कि आप लोग, मुझे मोबाइल से एलर्जिक है, जब कथा कर रहा हूं तब आप लोग कृपा करके अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर रखें। हाँ जी क्या बात हो रही थी, तो ये ऋषि तो केवल फल खाए थे, तो मैं तो ऐसा फल खाया था, ऐसा फल ऐसे मैं खाया ही नहीं था, वो मिठाई होने के फल है, बड़ा अच्छा फल है, ऐसा फल कभी खाया नहीं था, तो फल खाए मिठाई खाए बड़ा अच्छा है। उसके बाद जब स्त्रियां जा रही थी तो उन्होंने कहा कि यदि आप दुख न माने, यदि पीड़न माने, हम लोगों के सत्कार का अलग तरीका है, हम लोग एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, आज लोग यह हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उन स्त्रियों ने कहा कि हम लोग आलिंगन करते हैं, ऋषि का कोई बात नहीं, हम भी आलिंगन कर लेंगे, उन्हें मालूम नहीं था कि स्त्रियां हैं और हम पुरुष हैं क्या है। तो वो भी उन अप्सराओं का आलिंगन किए और उन अप्सराओं ने उन्हें चुंबन किया, बस हो गया काम, अब पूरा काम हो गया, जो विद्याएं जिसके काम के लिए आए थे उनके हृदय को अब पकड़ लिया। और ऋषि वहां पर थे, उनके पिताजी अभी तक नहीं आए थे, रात को सो रहे थे बेचारे, नींद नहीं आ रही थी, बार बार वो जो फल मीठा मीठा खाए थे उस फल का उन्हें याद आ रहा था, रसगुल्ला और रसमलाई का, और उन स्त्रियों के द्वारा दिया गया इम्ब्रेस और चुम्बन याद आ रहा था। तो पुनः दूसरे दिन घूमते घामते पुनः उधर ही चले गए और वो तो जानती थी कि अब हम बीज बो दिए हैं, अब तो अस्तुरित होगा। तो वे उन व्यक्तियों ने देखा कि ऋषि आ रहे हैं तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई आकर के, तो इस प्रकार से सोचा और फल खिला दी मीठा वाला, वही और ऋषि बड़े खुश हो गए और ऋषि पूछे कि ऐसा फल कहाँ मिलता है, किस पेड़ में फलता है, अरे हमारे यहाँ जितने पेड़ हैं उसके फल तो केला है और क्या एपुल है इत्यादि, लेकिन ये फल कहाँ फलते हैं, कालिमा हे ऋषिवर आप हमारे साथ हमारे आश्रम पर चलिए, देखिए आपके निमंत्रण से हम आपके आश्रम पर गए, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब आप हमारे आश्रम पर चलिए और वहां बहुत फल है तो कम फल खिलाए, और साधु लोग खाते हैं तो दवा का खाते हैं, वो चाय कॉफी नहीं पीते हैं, चाय कॉफी तो भूख नहीं लगता है, साधु लोग खाते हैं तो
10-20 रोटी एक साथ में खा रहे हैं, हनुमान प्रभु हैं इधर 40 रोटी खा रहे हैं हनुमान। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि भक्तों को प्रसाद से बड़ा प्रेम होता है। मैं दूसरे भाव से नहीं कह रहा हूं, भक्तों को प्रसाद से बड़ा प्रेम होता है साधु महात्माओं को, क्योंकि उनकी पैदाइश लगी रहती है ना, सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, दोपहर में खाते हैं, भूख लगी रहती है, तो ऋषि को बड़ी भूख तो लगी। जिन्होंने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आप हमारे आश्रम पर चलिए और वहां आपको खूब फल खिलाएंगे, इससे भी मीठा मीठा फल खिलाएंगे। और उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और बात करते करते महादेव से बिल्कुल नजदीक में ही एक वन था जहां पर निवास करते थे। अभी सब जंगल काटे गए हैं, पर बहुत जंगल थे, तो वे लोग आ गए अंगदेव और ऋषि सिंह को साथ में लेकर के आए। जैसे ही ऋषि सिंह अंगदेव ने प्रवेश किए, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बहुत जोर की वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी सब लोग प्रसन्नचित हो गए। बाद में नरेश महाराज रोमपाल इनका सत्कार किए, वेलकम किए और अपने पुत्री शांता का कुछ दिन रहे, 2-10 दिन रहे वहां पर। तो 2-10 दिन रहने के बाद जब दोस्ती हो गई एक दूसरे से, तो महाराज रोमपाल सब बात बता दिए और कहे कि हे मां, आप यहां पर हमारे पास पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरी जो पुत्री है, मेरी पुत्री शांता, उसको मैं देना चाहता हूं आपको, आपके पत्नी के रूप में विवाह के लिए। तो रोमपाल के उस ऑफर को ऋषि सिंह स्वीकार कर लिए और शांता से विवाह हुआ। तो वहां पर कुछ दिन रहे और सब कुछ बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा था। पार्ट फैमिली हो गए थे महाराज, ऋषि सिंह हो गए थे, उनके लिए स्पेशल पैलेस का व्यवस्था किया गया था जहां पर शांता और वो बड़े आखिर दामाद थे, महाराज रोमपाल के दामाद थे। तो सुमंत जी ने कहा कि यदि किसी प्रकार से आप जाकर के रानियों के साथ में आप जाकर के ऋषि सिंह को यहां पर लेकर के आए और उनकी अध्यक्षता में जब हो, तो निश्चय ही, मैंने सुना है, सनत कुमारों ने ऐसा कहा था, मैंने सुना है कि आपको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और हे महाराज, ऐसे भी महाराज रोमपाल आपके बचपन के साथी हैं, तो आप जरूर जाइए। तो वशिष्ठ जी से पुनः महाराज दशरथ इस बात को पूछे और वशिष्ठ जी इत्यादि जितने ब्राह्मण सब ने अनुमोदन किया इस कार्य के लिए, काफी जरूर आप जाइए, जरूर ऐसा कीजिए। ऋषि वशिष्ठ को और वामदेव इत्यादि को आगे कर करके दशरथ जी अपने 3 पटरानियों को लेकर के कौशल्या करके सुमित्रा को लेकर के पूरे हाथी घोड़े रथ से जुटे हुए वे लोग प्रस्थान किए अंगदेश के लिए। अयोध्या से अंगदेश जा रहे हैं। रास्ते में पड़ाव के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। जब महाराज रोमपाल को पता चला कि महाराज दशरथ आ रहे हैं, तो कहना ही क्या था, उनका दिल खुशियों से भर गया और पूरे नगर को सजा दिए महाराज रोमपाल महाराज दशरथ के अगवानी में। बचपन के मित्र थे। मित्रता एक ऐसी चीज है, वो भी बचपन की मित्रता जो हो वो भूलती नहीं है। बचपन की मित्रता, कृष्ण सुदामा की मित्रता को जानते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जो मित्रता है वो मित्रता है। यादगारियां जो है, हम लोग याद कुछ यदि करना चाहें तो सबसे अच्छा याद करने का दिन कौन दिन है? बचपन का दिन। जवानी तो रहता नहीं है, तो जवानी की यादगारियां नहीं रहती है, और बुढ़ापे में केवल दुख ही दुख होता है, तो उसको कौन याद करना चाहेगा? बचपन का ही जीवन है जो टेंशन फ्री जीवन है। कहां से स्कूल फी आएगा, कहां से नोटबुक आएगा, कहां से पेन आएगा, कहां से क्या आएगा, ये सब बाप मां का हैरत है, अपना हैरत नहीं है। तो टेंशन एकदम फ्री जीवन जो है बचपन का, और बचपन के एक एक दिन के जो काल है वो याद रखते हैं। यहां पर डायरी रखनी पड़ती है आज के दिनों को याद, कब क्या किए, परसों क्या किए, या कल क्या करने वाले हैं। बचपन की डायरी नहीं है, इसे भी याद है किस स्कूल में गए थे, कभी पास करते जरिया बनते हमें इस स्कूल में गया था, याद पड़ गया। हमारे प्रिंसिपल थे, टीचर थे, मैथ के टीचर थे, हमें सब कुछ याद है, आज भी याद है, 40-50 साल हो गए फिर भी याद है। तो बचपन की यादगारियां बहुत मधुर होती है और बचपन की मृदुता बहुत मधुर होती है। तो पहले जमाने में मित्र लोग ऐसे थे, एक मित्र का सब कुछ दूसरे मित्र के लिए, दूसरे मित्र का दूसरे के लिए था। वैसे ही महाराज सुसेन अपने पुत्री पिता को कुंती भोज को दे दिए थे, ठीक वैसे ही महाराज दशरथ अपने पुत्री को, प्रथम पुत्री को दे दिए थे रोमपाल को। जब रोमपाल वहां पर आए और रोमपाल के पास जब महाराज दशरथ आए, उनका स्वागत हुआ, तो रिश्तेदार से परिचय कराया गया और महाराज रोमपाल कह रहे हैं कि आपके असली जो फादर इन लॉ हैं वे यही हैं, सांता के पिता यही हैं। तो सांता जब सुने तो उसको आश्चर्य हुआ, मेरे पिता ये हैं, मैं समझा कि आप मेरे पिता हैं। सांता बहुत छोटी थी जब महाराज दशरथ दे दिए थे रोमपाल को। एनीवे, तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं अपने राज्य में एक यज्ञ करा रहा हूं, अश्वमेध यज्ञ, और मेरी इच्छा है कि यदि सांता और उसके पति सिंह हमारे पास आए तो हमारा सौभाग्य होगा। तो महाराज ने पत्र क्यों नहीं, जरूर। तो कुछ दिन वहां पर रहे आराम से, भजन कीर्तन सब लोग मिल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, सब लोग राम। हम ये 3 दिन रहना चाहिए, 3 दिन के ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो गड़बड़ जाता है, चाहे समाज ही अपना क्यों ना, 3 दिन बस। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं 3 दिन का पहुना और 4th दिन के होना। 3 दिन तक वह गेस है, पाहुन है, पाहुन मतलब गेस, और 4th दिन केहू ना, कोई नहीं है, लोग उसको सम्मान नहीं देते। तो ये 3 दिन रहना चाहिए और ससुराल में तो और भी रहना चाहिए, ससुराल में 3 दिन ज्यादा कभी नहीं रहना चाहिए, ननिहाल में रह सकते ससुराल में, वो तो एक तरफ से बहुत बड़ा तपस्या है ससुराल में रहना। एनीवे, तो महाराज दशरथ ऋषि सिंह को और अपनी पुत्री सांता को लेकर के आए और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होने लगी। जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो वहां पर जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था, ये बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा था। जब महाराज दशरथ लेकर के आ रहे थे सांता को और इस स्त्री को, तो इसका खबर पहले ही अयोध्या में पहुंचा दी गई थी और अयोध्या को बहुत सुंदर ढंग सजाया गया था। अयोध्या में राजा महाराज दशरथ ऋषि सिंह और उनकी पत्नी सांता के अगवानी में किस प्रकार से अगवानी की, इसका वर्णन 2 अध्याय में यहां पर किया गया है। 2 अध्याय में अगवानी किया गया है किस प्रकार से। वहां पर आए, अब यज्ञ की तैयारी हो रही थी, तो वशिष्ठ जी महाराज दशरथ और उन लोगों के साथ में बैठकर के निर्णय कर रहे थे कि यज्ञ कहां करने चाहिए, स्थान जरूरी है, अब कौन करेगा ये तो निश्चित था, रजिस्ट्रिंग की अध्यक्षता में यज्ञ होगी, कहां स्थान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके विषय में आप वर्णन किया गया है। तथे चौक राजा उवाच बहुधापतिं संभारा संहृहन्तां ते सुरगश्च विमुच्यताम्।
सरलू उत्तरे तीरे जग भूमि विधीयतम। त्रिशृंग तैयार हो गए जग करने के लिए। ऐसा कर करके राजा के पृथ्वीपति महाराज तरफ के प्रार्थना को स्वीकार किए। तो कहे महाराज, जो भी जग में सामग्रियां चाहिए उनका आप व्यवस्था कराइए और अश्वों को आप छोड़ दीजिए। दुर्ग अश्व मुचना अस्मित जग होने जा रहा था, उस जग में अस्मित जग के लिए अश्वों को छोड़िए और स्थान बताए सरजू नदी के उत्तरी किनारे पर जग भूमि का निर्माण कराइए। यानी राजमहल को छोड़ देना चाहिए, राजमहल को छोड़ करके सरजू नदी के किनारे जग कराया जाएगा। तो एक साल तक जग हुआ और एक साल तक वहां पर रहने के लिए विभिन्न प्रकार की अट्टालिकाएं बनाई गई, महल बनाए गए अलग अलग लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था यह जग। स्वाभाविक है हम लोग भी अपने घर में कुछ बड़ा त्योहार होता है तो सबको न्योता देते हैं कि नहीं, अपने जितने सभी संबंधी हित मित्र हैं सबको बुलाते हैं। तुम्हारा दशरथ भी अपने जितने भी हित मित्र थे सब लोगों को बुलाए, कैकेयी नरेश को बुलाए, यहां पर वर्णन किया है कौन कौन लोग आए थे। कुरेशिया से भी आए थे, कुरेश देश के राजा कुरेशिया, कुरेशिया जो है वो रशिया में है, वहां के राजा कुरेश देश के राजा आए थे, गंधार के राजा आए थे, कैकेयी देश के राजा आए थे, मगध देश के राजा आए थे, दक्षिण भारत के जितने राजा थे सब आए थे। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों राजा लोग आए थे और उन लोगों के यहां के जितने मंत्री लोग थे, सामंत लोग थे, सब आए थे। तो वहां पर सभी लोगों के लिए उचित व्यवस्था था, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, सबके लिए समुचित व्यवस्था था। सब लोगों के खाने पीने के लिए समुचित व्यवस्था था, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज दशरथ का राज सब प्रकार से संपन्न था, किसी चीज की कमी नहीं। इस प्रकार से जो घोड़ा गया पूरे विश्व में घूम करके आ गया, तब ए पुत्र प्राप्ति के लिए कुटेश्वरी यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जब वह यज्ञ हो रहा था जब वहां पर यज्ञ हो रहा था तो प्रत्येक दिन महाराज दशरथ और उनकी पत्नियां बिना खाए पिए जग में बैठी हुई थी। और जगों के समाप्ति के दिन, अंतिम दिन, वहां पर अग्निदेव यज्ञ का जग से एक बर्तन लेकर के, बहुत बड़ा परात लेकर के एक बर्तन लेकर के आए और उसमें खीर था। जब जब ये कथा मैं कल कहूंगा, खीर वाला कथा यहां से, लेकिन इसके बीच में दूसरी कथा है। जब जग की आहुति दी जा रही थी तो समस्त देवताओं का नाम बोल बोलकर यम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, इदम ब्रह्मा इदम नमः स्वाहा, इदम अग्नय इदम नमः स्वाहा, इस प्रकार से जग की आहुति दी थी। तो जब जब जग की आहुति दी जाती थी तो सब के सब देवता वहां पर आते थे अपना भाग ग्रहण करने के लिए। सब देवता लोग 33 करोड़ देवता वहां पर आ गए थे। वहीं पर देवताओं का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। राजा को कोई देख नहीं पाया, ऊपर ही थे अदृश्य देवता। वहां पर बहुत बड़ा मीटिंग, ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए। जब ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए तो मीटिंग शुरू हुआ और सब देवता लोग द्राहिमान 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 कहते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। और ब्रह्मा जी कहे, अब क्या हो गया आप लोगों को, अभी तो बड़े आशा अब बड़े प्रेम से आप लोग ने जग का भाग ले रहे हैं, अब क्या तकलीफ हो गया। जाके महाराज मत पूछिए क्या तकलीफ हो गया, क्या तकलीफ नहीं है यह पूछिए, क्यों तकलीफ ही तकलीफ है। अच्छा वो कैसे है, वो कैसे आप भूल गए हैं, आपने ही तो आशीर्वाद दिया है ना रावण को। रावण के अत्याचार से
ये सब हम लोग बहुत परेशान हैं।
रावण अपने जमाने के एक बहुत बड़े प्रतापी राक्षस थे। हालांकि पूर्वजन्म में वे एक राजा थे, उनका नाम था प्रताप भानु। बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पिता जी का नाम था सप्तकेतु, एक कैकेय देश के राजा थे। सप्तकेतु के दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। ये दोनों प्रतापी थे। जब चौथापन आया और महाराज सप्तकेतु हरिभजन करने के लिए वन में जाना चाहते थे, वनम गतोय हरिमाश्रये, भजन करने के लिए वन में जाना चाहते थे, तो बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज दे करके और छोटे भाई को कहेंगे अपने भाई का तुम सहयोग करना, वे वन के लिए प्रस्थान किए। धर्मरुचि नाम के उनके महामंत्र थे। उनका नाम था धर्म रुचि। उनकी रुचि कहां थी? धर्म में थी। तो महाराज प्रताप भानु को वो हमेशा धर्म संबंधी शिक्षा दिया करते थे, बात काटकर धर्म के संबंध में लाते थे। प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा थे। उनके प्रताप से सचिव का बात महाराज दशरथ के राज्य के समान था। सब लोग संपन्न थे, कोई तकलीफ नहीं था। चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिए थे। बड़े दयालु राजा भी थे। लड़ाई में जब राजाओं को परास्त कर चुके थे तो उनका हनन नहीं करते थे, मारते थे, जान नहीं मारते थे, छोड़ देते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से जब उनका राज चहोर सुरक्षित था, वे सुखी थे। एक दिन महाराज प्रताप भानु मिर्गिया के लिए बाहर निकले, शिकार खेलने के लिए बाहर निकले। वे शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के पर्वतों में गए। वहां पर बहुत से हरणों का वे वध किए। तब तक से उन्हें एक विशालकाय जंगली सुअर दिखाई पड़ा, जो बहुत विशाल काला शरीर था। उसके टांग जो दांत थे उजले उजले थे। जब दांत से निकाला था तो लग रहा था मानो कि कोई राहु चंद्रमा को क्रॉस लिया। इस प्रकार से जब वह सुअर महाराज प्रताप भानु के घोड़े के टाप का आवाज सुना चला था और एक पीछा किया। वह सुअर कभी कभी लुप्त हो जाती थी, कभी छिप जाता था, कभी सामने आता था। इस प्रकार से राजा को बहुत दूर लेकर चला गया और जाकर के किसी झाड़ी में वह सुअर छिप गया। राजा को दिखाई नहीं पड़ा, शाम का समय हो गया था। राजा बड़े थके मांदे थे, बहुत थक गए थे, तो उन्हें बहुत प्यास भी लगी थी। तो थोड़े ही दिन पर उन्हें एक कुटी दिखाई पड़ा, एक कुटिया दिखाई पड़ा। सोचे कि किसी साधु महात्मा कुटिया होगा, तो वे आए वहां पर उस कुटिया पर। और वहां पर एक कपटी राजा था जो तपस्वी का वेश धारण किया था। यह जो राजा था एक बार महाराज प्रताप भानु के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, लड़ाई में हार गया था, लेकिन फिर भी महाराज भानु प्रताप भानु का अधिपत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और महाराज प्रताप भानु उसको बाहर निकाल दिए थे। और वह उनसे दुश्मनागत लेकर के आकर के तपस्या कर रहा था। तपस्या कर रहा था महाराज प्रताप भानु और उनके खानदान को नष्ट करने के लिए। तो जब वह ऋषि कपटी ऋषि जो राजा था, कपटी ऋषि के रूप में था, जय प्रताप भानु को देखा तो समझ गया। लेकिन प्रताप भानु समझ नहीं पाया कि उसे दाढ़ी मोच सब था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऋषि ऐसा था, वो समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से ऋषि जो कपटी ऋषि तपस्वी था, वह महाराज प्रताप भानु का आदर करता।
उनको जल दिया, खाने पीने के लिए फल मूल दिया। फिर बात होने लगी तो तपस्वी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप देखने में तो राजा लगते हैं, आप हैं कौन? महाराज प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा थे और राजाओं का एक पॉलिटिक्स होता है कि राजाओं किसी को भी अपना परिचय तुरंत नहीं बताना चाहिए अनजान जगह पर, तो वे अपना नाम न बताकर कहे कि मैं महाराज प्रताप भानु का मंत्री, मैं महाराज प्रताप भानु का मंत्री और मैं शिकार के लिए आया था और इधर फंस गया, शाम का समय हो गया है, बहुत भूख प्यास लगा, इसलिए आपका आश्रम देखा मैं आ गया। तब महाराज प्रताप भानु ने जिस प्रकार से बात बताए तो ये तपस्वी जो कपटी राजा था वो समझ रहा था, वो समझ रहा था कि ये कौन है। कहा ठीक है, आप हमसे कपट कर रहे हैं, मैं भी आगे जा रहा है। तो कहा ठीक है, जब महाराज प्रताप भानु से बात होने लगी और उस ऋषि से, तो प्रताप भानु ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम भिखारी है। कहा नाम भिखारी है, ऐसा नाम कैसे, कहां साधु क्या कुछ नहीं होता है। वो इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि मैं आपने हमको घर से निकाल दिया था, मेरे पास आज न राज्य है, न धन है, न सैनिक है, न परिवार है, मैं कौन हूं? तो इस प्रकार से दोनों में वार्ता होने लगी और उसने कहा कि देखिए मैं यहां तपस्या करता हूं, बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, और बात बात में एक दूसरे का मन थोड़ा मिलने लगा। तो कहा देखिए मैं आपको पहले अपना नाम भिखारी बताया, लेकिन मेरा असली नाम जो है वह है एकतनु। एकतनु, एकतनु का मतलब क्या होता है? अच्छा मान लो एकतनु का मतलब क्या होता है? एकतनु इसलिए ये ब्रह्मा जी सृष्टि किए तो उसे मेरा वही शरीर है, मैं अपना शरीर बदला नहीं हूं, अपने कफ के प्रभाव से आज तक मैं उसी शरीर में जीवित हूं। और तब तक खुद गुणगान किया, खुद गुणगान किया और कहा महाराज मत पूछिए, तब से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तब से विष्णु पालन करते हैं, तब से भगवान संहार करते हैं, तब के समान और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये सचयुग का बात तपस्या था। यदि आज कोई कहे तो हम क्या कहेंगे? हरिनाम ही सब कुछ है, नहीं कल कर्म धर्म विवेक राम नाम अवलंबन देखो, हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, हरे कहो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो प्रतिगमिता। बहुत अच्छा लगा वहां हाथ ला लिए तो कम से कम आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, सब कंप्यूटराइज हो गया है, हर क्लास सब तो कंप्यूटराइज हो गया है। जिस प्रकार से पितामह भीष्म जब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाए तो सहसा नगाड़े डमरू सब बज पड़े कि सब कंप्यूटराइज था, फिक्स थे। तो ऐसे में हरे नाम किया था आपको नाम बना लिया। चलिए आप सही नहीं एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जैसे हम लोग हरिनाम का बखान करते हैं तर्जुम में एकमात्र वही सारा सहारा है और हरिनाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से तपस्वी कपटी तपस्वी पुनः कपटी तपस्वी ने खूब तपस्या का खूब बखान किया और धीरे धीरे महाराज प्रताप भानु का दिल जीतते जा रहा था, दिल जीतते जा रहा, दिल जीतते जा रहा था। तो महाराज प्रताप भानु जब दिल जीत रहा था तो महाराज प्रताप भानु भी कहे कि देखिए ऋषिवर, आप तो जानते हैं जब मैं शुरू में आया तो मैं आपको अपना सही परिचय नहीं बता पाया, लेकिन जब अब दोस्ती हो गई है, आप हमको जान गए, मैं आपको जान गया, तो आपको छिपाना क्या है? तो कपटी तपस्वी ने कहा कि महाराज मैं जानता हूं कि आपने जो कपट से अपने को कहा कि मैं महाराज प्रताप भानु का मंत्री हूं वो मैं समझ गया था, ये आपके ये कोशिश था, ये राजा को कभी भी अपना परिचय न देना चाहिए, बात बिल्कुल सही कहा था, तो कपट का था महाराज आपको अपना की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आप मैं महाराज प्रतापवान हूं, आप पत्रकेतु के पुत्र हैं, आपका भाई है अतिमर्दन, धर्मन जी आपका मंत्री है कि नहीं है ना, महाराज बाप से बाप त्रिकाल धरती है, अब कहना ही क्या था। अब महाराज प्रताप भानु का जो थोड़ा बहुत शंका रह गया था वो भी खत्म हो गया, अब त्रिकाल धरती है। अब तुरंत महाराज प्रताप भानु उनके चरणों में पड़ गए और कहे कि महाराज आप त्रिकाल धरती हैं, बतलाइए मेरा क्या होगा। अगर आप कुछ बड़ मांगो, मैं बर मानना चाहता हूं कि मुझे किसी प्रकार की बुढ़ापा ना आए, मैं इसे आप एक देह में रहने वाले एक तनु वाले हैं, मुझे कोई बुढ़ापा ना आए, मैं किसी शत्रु से कभी परास्त ना हूं और हमारी जितनी प्रजाएं हैं वो सब सुखी रहें और हमारा मन हमेशा धर्म में लगा रहेगा, इच्छा से इच्छा बर मांगे। तब कपटी ऋषि ने कहा कि महाराज इसके लिए एक ही संभव है, देखिए संसार में आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण लोग हैं उनको हम कोई नहीं कर सकता है, ब्राह्मण लोग इंडिपेंडेंट, भक्त लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, भगवान इंडिपेंडेंट है, भक्त भी इंडिपेंडेंट, उनका हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, हम आपको सब जज कराएंगे सब करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का गारंटी नहीं दे सकते हैं कि पता नहीं कब गुस्सा आएगा कब श्राप दे देंगे। इसलिए मेरे विचार से यदि आप ब्राह्मणों को खुश कर लेंगे तो संसार में आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, और ब्राह्मण लोग खुश हो जाएंगे तो आशीर्वाद दे देंगे, आपको अमर होने का भी आशीर्वाद दे सकते हैं, आपकी जो चार इच्छाएं हैं सब की सब इच्छाएं पूर्ण हो सकती है केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करके। ठीक है, तब उस कपटी राजा ऋषि के रूप में उसने कहा कि एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, दो काम करना पड़ेगा, एक तो ब्राह्मणों को खुश करना और दूसरा बात यह है कि जब आप जाएंगे यहां से तो हमारा आपसे मुलाकात हुआ था, यह बात किसी को मत बताइएगा, यदि आप यह बात किसी को बताएंगे तो आपका पूरा परिवार विनष्ट हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। तो राजा तुरंत हाथ जोड़ करेंगे, नहीं तो मुझे गुरुदेव ऐसा कैसे कर सकता हूं, ब्राह्मण और गुरु के चरणों में अपराध से कोई बच नहीं सकता है, अरे ब्रह्मा के चरण में कोई अपराध करे तो गुरु बचा सकते हैं, विष्णु के चरण में अपराध करे तो गुरु बचा सकते हैं, शिव के चरण में अपराध करे तो विष्णु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु और वैष्णव और ब्राह्मण के चरणों में अपराध से कोई नहीं बचा सकता है। हरि बोले अपराध हरिना क्यों आप बोले अपराध नहीं को वैष्णव के चरणों में कोई अपराध कर ना ही कोनो त्राण कोई नहीं बचा सकता है, दुर्वासा ऋषि को न ब्रह्मा जी बचाए न भगवान विष्णु बचाए न भगवान शिव बचाए, वैष्णव अपराध बहुत भयंकर होता है, इससे वैष्णव अपराध से हमेशा बचना चाहिए। तो बहुत वार्ता हुई, तो फिर महाराज प्रताप भानु पूछे कि ब्राह्मणों को खुश कैसे किया जा सके, खुश करने का तरीका क्या है। तब यह कपटी जो ऋषि का रूप धारण किया था राजा, उसने कहा कि हे महाराज मेरे हाथ में तो ऐसे खेल है, मैं तो ऐसे खर सकता हूं खुश लोगों को, लेकिन क्या बात है ना कि जब से मैं जन्म लिया हूं नगर में प्रवेश नहीं किया, मैंने कसम खा लिया है किसी नगर में जाऊंगा नहीं, वहां जाने को मुंह माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं जंगल में जाता हूं और नगर में जाता ही नहीं, लेकिन फिर भी आपसे और हमारी इतनी बड़ी दोस्ती हो गई है, शांति हो गया तो आपसे इतनी दोस्ती हो गई है तो आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं, मैं देखूंगा क्या मैं करूं, कुछ करूंगा व्यवस्था जरूर करूंगा। तो राजा बोला कि हे महात्मा, अरे बड़े लोग जब छोटे पर स्नेह रखते हैं तो बड़े लोग छोटे के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिए हैं कि एक बार इंग्लैंड का कोई बैरिस्टर था, कोई बड़ा पद पर था, तो उससे मिलने एक दूसरा व्यक्ति गया। तो बैरिस्टर अंदर अपने नाती के साथ में खेल रहा था, तो उसने कह दिया उस आदमी को कि उनको बोलो बैठने के लिए, जो वॉचमैन था बैठने के लिए बोलो। तो बैठे थे, वो बैठे बैठे भी सरकारी नौकरी के बड़े पद पर थे, बैठे बहुत देर हो गया, एक घंटा डेढ़ घंटा। तो भाई क्या कर रहे हैं अंदर, दरवाजा खुला देखा तो क्या देख रहा है, जो नाती जो है उन कंधे पर बैठा हुआ है और एक घोड़ा बने हुए हैं। चलो 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 चलो, एक घोड़ा बनाया हुआ है। तो प्यार से इतना बड़ा पॉलिटिक्स का पद पर आने वाला व्यक्ति भी क्या बन गया था, घोड़ा बन गया। तो जब प्यार हो तो बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के लिए क्या नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से पर्वत को तीन से प्यार है, तीन जो है घास पत्ते तुच्छ होते हैं, ग्रादी तीन होते हैं, लेकिन फिर भी पर्वत तीन को अपने सिर पर धारण करता है। क्यों करता है? प्यार के चलते। उसी प्रकार से जो फेन होते हैं, जो बुदबुदे होते हैं पानी में, वो अशुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी समुद्र और जल भी उन बुदबुदों को अपने सिर पर रखता है। बुदबुदे पानी के अंदर नहीं होते, कहां होते हैं? ऊपर होते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी धूल को, धूल मतलब यूजलेस, लेकिन फिर भी पृथ्वी धूल को अपने सिर पर रखती है। ये सब क्यों होता है? बड़े लोग जब छोटे को स्नेह करें, प्यार करें, तो हे महाराज आपके प्रति मेरा प्यार हो गया है तो मैं आपके लिए अपना नियम तोड़ सकता हूं। पहले तो कहा कि नहीं नहीं, बाद में राजा को अन्य विनय किए ये सब उदाहरण दे करके, ठीक है आपके लिए मैं नियम तोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। तब वह कपटी राजा तैयार हो गया था नियम तोड़ने के लिए। इसका तो अब क्या करना चाहिए, ब्राह्मण कैसे खुश करें, गाय का दान दे, क्या करें? कहते नहीं नहीं नहीं, खुश करने का सरल तरीका है कि लोगों को खिलाना। जिह्वा एक ऐसी चीज है, जिह्वा हो गया प्रभात, जिह्वा एक ऐसी वस्तु है, जिह्वा एक ऐसी चीज है कि जिसको किसी को वश करना हो तो जिह्वा पर डाली। प्रभुपाद जी भी कृष्ण का प्रसाद खिला करके, कहा जाता है कि जब लोग रजोगुणी भोजन खाते हैं तो रजोगुणी बुद्धि बनती है, तमोगुणी भोजन खाते हैं तमोगुणी बुद्धि बनती है, सदगुणी भोजन खाते हैं सदगुणी बुद्धि बनती है, और कृष्ण का प्रसाद खाएंगे तो कृष्णमयी बुद्धि बनेगी। तो प्रभुपाद जी शॉर्टकट में प्रचार किए कृष्ण का प्रसाद खिला करके। तार बुद्धि जिह्वायती लोहमय दुष्टमति, मति को दुष्ट बना देता है, लेकिन उस जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के लिए भाई ऐसी जादू करा दो आधा घंटा में क्या खराब होने वाला है, सफोकेशन हो जाएगा, कोई काम नहीं, कोई कमल नहीं चाहिए किसी को, चलता है काम। तार मति जिह्वा से जिह्वा उसी प्रकार से वह कपटी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक साल तक आपके राज्य में जितने ब्राह्मण लोग हैं, लाखों के तादाद में ब्राह्मण को, उनके बच्चों को, पूरे परिवार को बुलाइए और सब लोगों को अच्छे तरह से खिलाइए और दान दक्षिणा दीजिए बस, और जब ब्राह्मण खुश हो जाएंगे तो आपको जो चीज चाहिए वो दे दो। तो राजा खुश हो गए और ऋषि ने कहा कि देखिए महाराज अब रात हो गई है, आप थक भी गए हैं, आप विश्राम कीजिए, मैं ऐसा करूंगा कि आपको आपके घोड़े के साथ में आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आप यहां नहीं है, कहां पर हैं? अपने राज्य में। और जो आपका रसोईया है, मैं आपका रसोईया बन करके वहां पर जाऊंगा और आपके रसोईया को मैं कहीं पर छिपा दूंगा, ठीक है, और जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं वहां पर आपके साथ में बात करूंगा, जो अभी हम लोगों के बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं। तो राजा तो बड़े थके मंदे थे और वे जाकर के सो गए। जब राजा सो गए तो वहीं बगल में
जो सूअर का जो रूप धारण किया था उसका नाम था काल केतु, वो भी सूअर था और लेकिन बहुत प्रबल सूअर था, बहुत ब्राह्मणों का वध किया था, भक्तों का वध किया था, ऋषियों का वध किया था। और महाराज प्रताप भानु के पास ऋषि लोग आकर के प्रार्थना किए थे, तो प्रताप भानु उस असुर काल केतु रूपी जो सूअर था उस असुर के समस्त परिवारों का सफाया कर दिए थे, उसके 10,000 पुत्रों को मार डाले थे, नाती पोते सब लोगों को सफाया कर दिए थे। तो वो अभी अवसर ढूंढ रहा था और एक अवती राजा था ये भी, अब दोनों मिल गए साथ में जोर जोर मौते रे भाई। लेकिन राजा समझ नहीं पाए, तो वह जो काल केतु राक्षस था वो बड़ा एक्सपर्ट था अपने शरीर को बदलने में, किसी वेद से जा सकता था, कैसा भी उदाहरण कर सकता था। तो जब राजा बड़े गहरे नींद में सो गए थे तो यह कपटी तपस्वी और यह काल केतु दोनों मिलकर के एक पूरा बात पतला दिया, तपस्वी कैसे से बात हुआ है। और वह काल केतु जो सूअर था तो रात में सोए हुए राजा को उठाया मां से और ले जाकर के उनके राजमहल में लेकर गया और रानी के रनिवास में उस बिछावन पर सुला करके घोड़े को बांध दिया और स्वयं बालों से रिंग लगा कर फटाफट रसोइया बन गया। और जो उनका रसोइया था उनको पकड़ करके ला करके अपने जादू मंत्र से उनको एक खान में डाल दिया पड़े बुरे होने पर। इस प्रकार से जब महाराज प्रताप भानु सुबह सुबह उठे तो मैं राजमहल में आ गया, वो ऋषि कितना कपापी है, उसने ठीक कहा था कि मैं लेकर चला जाऊंगा। तो महाराज प्रताप भानु नहीं चाहते कि लोग जाने नहीं कि मैं आ गया, तो रात को जल्दी जल्दी उठ करके घोड़े को लेकर के बाहर चले गए। और जब दोपहर का समय हुआ तब बाहर से आया, उनका अगवानी हुआ, सब लोग कीर्तन हो रहा था वहां पर फूलमाला सब सब अगवानी हुआ, उनका अगवानी हुआ, स्वागत हुआ। और बाद में रसोइया आया और अकेला में आकर के महाराज को बताना शुरू कर दिया, तरह समझ गए कि हाँ हमारा गुरु जी है। आगे तो पर पड़ा और समस्त ब्राह्मणों को बुलाया गया खिलाने पिलाने के लिए, सब ब्राह्मण लोग खाने पीने के लिए आए। तो यह जो असुर था काल केतु जो सूर्य के रूप में बले था, वह मनुष्यों का, गौओं का, पशुओं का मांस पकाया, सब अवसर ऋषि लोग खाने के लिए आए। तब राजा इन मांस परोसने जा रहे थे, इस काल केतु के द्वारा बनाया गया मांस परोसने जा रहे थे, तब से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण गण, आप लोग जल्दी उठिए और अपने अपने घर पर स्नान कीजिए। ये भोजन जो है वो मनुष्यों का, गौओं का और पशुओं का मांस मात्र है। उठे साधु महात्मा से तक पंडित लोग सब उठे, बड़ी गुस्सा में आए और गुस्सा में आकर के और महाराज प्रताप भानु को, उनके भाई मंत्री सब लोगों को श्राप दे दिए कि जाओ, अरे ये तुम असुर के समान व्यवहार कर रहे हो, आस्तिक प्रवृत्ति अपना लिए हो, तुम्हारा भोजन मांस हो गया है, तुम्हें राजा बनने की जरूरत नहीं हो, तुम जाकर के असुर बन जाओ। उन्होंने श्राप दे दिया। तब तक से आकाशवाणी आ गई पुनः कि हे ऋषिवर, आप लोगों ने बड़ा गलत काम किया, हे ब्राह्मण देवता आपने बहुत गलती किया, इसमें बेचारे राजा का कुछ भी गलती नहीं है, ये जानता भी नहीं है, ये रसोइया है, पूरा बात आकाशवाणी बता दिया। जब राजा खुजवाने लगे कि रसोइया कहाँ गया तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो लपाता हो गया। बाद में अब करें क्या, ब्राह्मणों के चरणों में पड़े, लेकिन अब पढ़ने से होगा क्या, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो वही महाराज प्रताप भानु दूसरे जन्म में ब्राह्मण बने और अरिमर्दन जो था वह कुंभकर्ण बना और रुचि धर्म नाम का जो मंत्री था वह विभीषण बने। लेकिन इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, पितामहो रावणस्य साक्षात् देव प्रजापति स्वंभू लोकानां प्रभु श्रष्टा महातपा। ये जो रावण इस खानदान में आया था वह सुनिए, कहते हैं पितामहो रावणस्य, रावण के जो पिता ग्रेट ग्रैंड फादर सत्थाव देव प्रजापति, वो प्रजापतियों के देवता कौन है? स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, सर्वलोकानां प्रभु स्रष्टा महातपा, महान तपस्वी और समस्त लोगों की रचना करने वाले ब्रह्मा जी रावण के पितामह हैं। ब्रह्मा के पुत्र थे, उनका नाम था पुलस्त्य जी। पुलस्त्य जी का विवाह हुआ था गौ नाम के स्त्री से और उन्हें एक वैश्य श्रवण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्य श्रवण की आसक्ति थी ब्रह्मा जी के साथ में, ऐसे भी कहा था अगर नाती होते हैं वो दादा से ज्यादा प्रेम रखते हैं। तो वैश्य श्रवण की आसक्ति और जो प्रेम था वो ब्रह्मा जी के साथ ना, वो हमेशा पितामह के साथ रहते थे, पिता के साथ कभी नहीं रहते थे, एक तरह से पिता को एवॉइड कर दिए थे। तो पिता को छोड़कर के दादा का सेवा कर रहे थे। पुलस्त्य बहुत समझाने का प्रयास किया, देखो बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं तुम मेरे साथ रहो, लेकिन वो सुना नहीं चाहते, कल पितामह का ही सेवा करते थे। इससे कुपित होकर के पुलस्त्य बहुत दुखी हो गए, अब बेटा था श्राप ही नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने को एक्सपेंड किया, एक और पुत्र उत्पन्न किया अपने से जिसका नाम हुआ विश्रवा। तो पहले बेटे का नाम था वैश्रवण और दूसरे का नाम हुआ विश्रवा। विश्रवा और वैश्रवण ये दोनों बढ़ने लगे, बड़े होने लगे, लेकिन विश्रवा जो था उसकी उत्पत्ति हुई थी पुलस्त्य ऋषि के क्रोध से, तो हमेशा वैश्रवण के साथ में वैमनस्य रखता, बैर भाव रखता, अवसर ढूंढ रहा था कब मैं उनको उपास करूं मारू इत्यादि इत्यादि। क्या हो गया, ठीक है ना? और इस बात को जानते थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अभी कितना दिन चलेगा, तो उन्होंने अपने नाती वैश्रवण के लिए क्या किए, पितामह पितामह दौ वैश्रव से अमरत्व धने तम लोकपालक में वच, उसको आशीर्वाद दिए। किसका भाई कौन सुनता है, उसको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद क्या दिए, कहते हैं पितामह तू पितामना, खुश होकर के प्रसन्न होकर के पितामह गौ वैश्रवस्त्र दिए, क्या दिए अमरत्व धनेशत्व लोकपाल तुम्हें वज, उसको लोकपाल बना दिए और धन का स्वामी बना दिए यानी कुबेर, और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ नलकुबर। बाद में उन्होंने भगवान शिव से उसकी दोस्ती करा दी कुबेर की, वैश्रवण का ही दूसरा नाम भी कुबेर है, तो उनका दोस्ती करा दिए भगवान शिव से, और उन्होंने राक्षसों से भरी हुई एक नगरी बसाई जो सोने की नगरी थी, उसका नाम लंका पड़ा, और लंका का राजधानी वैश्रवण यानी कुबेर जी को प्रदान किए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी उनको पुष्पक विमान दे दिए, यक्षों का स्वामी बनाए, उनको स्पेशल टाइटल दिए राजराज राजेश्वर की पदवी प्रदान किए। जब यक्ष प्रदान हो गया तो विश्रवा जो कुलस्त ऋषि के गुस्सा से उत्पन्न जो पुत्र था वह बहुत दुखी रहने लगा। तो इन्होंने सोचा कि वो उसे दुखी रहना उचित नहीं है, तो वैश्रवा उनको पिता रूप में मानते थे, तो कहें कि ऐसा करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए वे तीन सुंदर राक्षस कन्याओं को, सुंदरियों को उनके सेवा में नियुक्त किया, विश्रवा जी के सेवा में। और ये तीन सुंदर स्त्रियां जो थी उनका नाम है इस प्रकार से, पुष्पकटा, राका और मालिनी, और कैकसी या मालिनी। तो इस प्रकार से इन तीन सुंदरियों से दासी थी और विश्वकर्मा का सेवा करती थी। सेवा से विश्वकर्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम्हें वर मांगो। तो उन्होंने पुत्र रत्न की इच्छा की। तो इन तीनों से जो प्रथम जो थी पुष्पकटा, उससे रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न हुए। राका से खर, दूषण और सुपर्णखा, और मालिनी या कैकेयी से विभीषण जी उत्पन्न हुए। बाप के तीन मां। एक दिन का बात है, विश्रवा जी अपने पुत्रों के साथ में गंधमादक पर्वत पर निवास करते थे और वहीं से वैश्रवण अपने पुत्र कुबेर के साथ में जा रहे थे विमान से। उनके पास पुष्प विमान था और बैठ करके बात कर रहे थे। तो कुबेर के इस धन को, उसके विमान को सब देख करके विश्रवा के जो पुत्र थे उनके दिल में एक अग्नि प्रज्वलित होने लगी, बड़े दुखी हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि किसी प्रकार से कुबेर को भगाना है। और इस प्रकार से वे लोग बड़ा घोर तपस्या किए, सब लोगों ने तपस्या किया। रावण 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रह करके अपने चारों तरफ पंचाग्नि जला करके केवल हवा पी करके 1000 वर्ष तक तपस्या किया। यहां पर किसी भक्त को या हमको भी किसी कह दिया कि एक दिन मेरा खाया नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो सुबह सुबह ठीक है, दोपहर तक ठीक है, शाम होते होते हरे कृष्णा। अब माला पर ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान कहां चला जाएगा, कब कब सुबह हो पेट पूजा उधर ध्यान जाएगा। लेकिन ये ऐसे प्रतापी थे कि मन को अपने वश में कर लेते, 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा करके पंचाग्नि जला करके और वायु पी करके तपस्या किया राम। कुंभकर्ण जो था वह खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और भूमि पर सो रहा था। वो बोला कि मैं खाऊंगा नहीं, जो सोऊंगा। वो खाता बहुत था, लेकिन कुंभकर्ण बहुत खाता था और सोता भी था। ऐसे भी जब भूख लगती है तो नींद ज्यादा आती है, मालूम है कंगना, जब भूख लगती है तो नींद ज्यादा आता है। तो कुंभकर्ण खाना पीना सब त्याग दिया था और विभीषण जी प्रत्येक दिन एक सूखा पत्ता खा कर करके और भगवान का नाम कर रहे थे, भजन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लक्ष्मी नारायण आगे बढ़े और सुपर्णखा और खरभूषण उन लोगों का पहरा दे रहे थे कि कोई आकर के इनके तपस्या में बाधा न डाल दे। इस प्रकार से 1000 वर्ष तपस्या किए तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी, एक तरह से अग्नि प्रज्वलित हो गई। सब देवता त्राईमान कहते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी खुश होकर के आए और रावण को कहे, पुत्र मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, बांधो तुम्हें क्या वर चाहिए। रावण वाचु गंधर्व देवा श्रुत हो यक्षरा सक्षत तथा सर्प किन्नर भूतेभ्यु नमे भूयात्रा भव। रावण ने कहा कि बानर और मनुष्य के अलावा, क्योंकि बानर और मनुष्य रावण के भोजन थे, तो
ताकि इन लोगों के अलावा चाहे गंधर्व हो, चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, राक्षस हो, सर्प हो, किन्नर हो, या कोई प्राणी क्यों न हो, वो मुझे प्राप्त न कर सके, यानी मैं किसी के द्वारा मारा न जाता हूं, बानर और मनुष्य के अलावा। तो ब्रह्मा जी का ये भाव ऐसा ही होगा। अब वहां से आए कुंभकर्ण के पास। अब कुंभकर्ण पहले बहुत खाता था, तो ब्रह्मा जी को चिंता लग गई थी कि जब खाता रहेगा पूरे सृष्टि में सब लोग खा जाएगा, तो क्या करना चाहिए इसको। तो वो समय सो रहा था, तो ब्रह्मा जी उसको जगाए कि जब हो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मान लो क्या वरमान चाहते हो तुम। तो उसको चाहिए था इंद्रासन, लेकिन कह दिया निद्रासन। सो रहा था ना, उसको जब जग रहा था, इंद्रासन कहने के बदले कहे निद्रासन, निद्रासन निद्रा का आसन, बस सोना चाहता। इंद्रासन नहीं कहा गया उससे। सरस्वती जी उसके जिह्वा पर आ गई। सौप्रवे महति इंद्र महति निद्रा तमसागत। पंडित जी कहते हैं उत्तमो गुण प्रधान था कुंभकर्ण, इसलिए महति निद्रा कह रहा है। महति मतलब बहुत विशाल निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा, ऐसा निद्रा की कोई जगाए तभी, तो खाने का समय जब आएगा तभी जब मरण नहीं जरूरता। तो छह महीना उड़ता है, छह महीना खाता था, ये था कुंभकर्ण। अब ब्रह्मा जी आए थे विभीषण जी के पास और विभीषण जी से पूछे कि बताओ विभीषण तुम्हें क्या वर चाहिए। देखिए कितना सुंदर विभीषण जी वर मांगे हैं। कहते परम आपद, परम आपद रक्षामि, न अधर्मे मे मति भवे, अशिक्षितं च भगवान ब्रह्मास्त्र प्रतिमा तुमे। कहते परम आपद संकट, परम आपद विशाल से विशाल यदि संकट आ जाए तो भी न अधर्मे में मति, बड़ा से बड़ा संकट आ जाए तो भी मेरा मति जो है वो अधर्म में न लगे। क्या सुंदर वरदान मांग रहे हैं विभीषण जी कि महान से महान संकट आए, प्राण पर भी संकट आ जाए, परम आपद भी महान से महान संकट भी आ जाए, प्राण छोड़ने का भी नौबत आ जाए, तो भी न अधर्मे में मति भवे, मेरे मन में अधर्म की भावना न आए। एक बात यह मांगे। दूसरा मांगे अशिक्षितम च भगवान ब्रह्मास्त्र प्रतिमा तुमे, बिना शिक्षा ग्रहण किए मैं शिक्षा नहीं लेना चाहता हूं, बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और उपसंहार करने की विधि स्फुरित हो जाए, बस ब्रह्मास्त्र का विद्या मुझे प्राप्त हो जाए बिना गुरु के पास गए, तो ही वरदान मांगे। ब्रह्मा जी दोनों के लिए शास्त्र कहिए दिए, कहे कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम्हें अपने तरफ से एक वरदान देना चाहता हूं। मित्रकल्पना न अधर्मे धीयते बुद्धि अमरत्वदानिते। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र तुम असुर कुल में जन्म लिए हो, तुम असुर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी मति अधर्म में नहीं लगी है। न अधर्म धीयते बुद्धि, तुम्हारा बुद्धि अधर्म को धारण नहीं किया है, इसीलिए अमरत्व ददामि दे, इसलिए मैं तुम्हें बल देता हूं कि तुम अमर हो जाओ। अमरत्व का वरदान ब्रह्मा जी किसको दिए? विभीषण जी। रावण नाक लगड़ गए अमरत्व का वरदान मांगने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी अमरत्व का वरदान रावण को नहीं दिए, किसको दिए? विभीषण को। तो जो भक्त होते हैं कभी मरते नहीं है, भक्त कभी मरते नहीं है। ब्रह्मा जी का वरदान भक्तों को मृत्यु होती ही नहीं, इसलिए 13 प्रकार के जो आज हैं अमर लोग उनमें से एक हैं विभीषण जी। आज भी हैं तो कहते हैं कि विभीषण जी लंका से तेली आते हैं, रंग क्षेत्र है, श्रीरंग पूजा करने के लिए, सर्वप्रथम दिल्ली आते हैं पूजा करने के लिए, कुछ लोग देखे भी हैं प्रहलाद का पूजा करने आते हैं आज भी भगवान राम का स्वरूप है। एनीवे तो ब्रह्मा जी कहते नौ अधर्म युद्धी अति बुद्धि अमृत दान दे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगी है इसलिए मैं तुमको अमृत का वरदान देता हूं। और आप लोग जानते हैं कि ये जो विभीषण जी हैं पूर्व जन्म में धर्म ऋषि नाम के महाराज प्रताप भानु के मंत्री थे, उनकी रुचि धर्म में लगी थी, इन लोगों को वरदान। तो इस प्रकार से यह रावण कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी के वरदान से बड़े प्रतापी हो गए थे और रावण अत्याचार के ऊपर अत्याचार कर रहा था, अत्याचार के ऊपर क्या क्या अत्याचार कर रहा था उसका विशद भ्रमण यहां पर वाल्मीकि रामायण में किया गया है। और उस अत्याचार के चलते देवता लोग बड़े दुखी थे और आकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पिता ये आपका ही किया कराया है, आपके ही चलते आज के रावण इतना बड़ा हो चुका है, आप यदि वरदान ऐसा नहीं दिए होते तो रावण में कहां करते थे करने के लिए, लेकिन फिर भी जब हो गया है तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने वो भी याद आ गया, जब वो वरदान मांग रहा था तो उसने कहा कि वानर और मनुष्यों के अलावा, वानर और मनुष्यों के अलावा मैं किसी से न मारा जा सकता, यानी वो मारा जा सकता है किससे, वानर और मनुष्य, ठीक है। तो देवता पुरुष तो क्या करना चाहिए पिता, तो करना क्या चाहिए, भगवान को चलना चाहिए, भगवान पर चलना चाहिए। अब जल समाप्ति होने के बाद में अब सब लोग क्षीर सागर पर गए भगवान से प्रार्थना की, तो भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव का जो लीला है वो कल किया जाएगा। आज की कथा ये समाप्त हो रही है। वो जय और विजय जो है वो जब ये रावण और कुंभकर्ण बने तो उनका अंश उन्हीं में आया, स्वयं प्रतापान कोई अंतर नहीं है, ये गुण आ सकते हैं, लेकिन रावण और कुंभकर्ण जो है वो जय और विजय महाराज प्रताप आनु और उनके भाई जो है वो चार पद को भी आश्रित प्रवृत्ति प्राप्त किए, रावण कुल में जन्म लिए। ब्राह्मण तुम्हें जन्म लेने का बात सनत कुमारों ने कहा था कि तुम असुर बनोगे, लेकिन ब्राह्मण तुम्हें जन्म लेने के बात इन ब्राह्मणों ने कहा था। कल आरती होगी तो सब लोग थोड़ा आरती कल अंतिम दिन
श्रील प्रभुपाद की जय।
कल का प्रोग्राम श्री गुरु महाराज